السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اچھا یہ
جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فسٹ آئی کیم فرام پاکستان ٹو ڈیز بفور اینڈ آن بہاف آف آل پاکستانیز بیک ہوم دی فلڈ وکٹمس اینڈ دوز ہو آر ناٹ دا وکٹمس بٹ دے آر ہیلپنگ دیم آن بہاف آف آل آف دیم آئی کنوے مائی گریٹیچیوڈ اینڈ تھینک یو ٹو یو کے آئی ایم الخدمت آل دا ورکرز اینڈ لیڈرشپ. Thank you very much for remembering your brothers and sister at the time of the need. Now, after that serious discussion and your contribution for flood victims and then wonderful poetry by Gilani Sahab, I don't know whether you have a stamina to be here for next 30 minutes or not, but you have to bear me. Aur mujhe pata chala hai ki sab log Urdu samajhte hain اور مجھے کہا تھا کہ تھوڑا سا انگریزی کا ٹچ دیتے رہیے گا. میں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور تھوڑا سا ذرا آپ کا وہ سٹیمنا بھی کم ہو گیا ہے, پھر بھی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اس بات کو بہت ضرور سنیے غور سے. اور میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کے تمام مسلمانوں کو اور انسانوں کو یہ بات کسی طریقے سے بتا سکوں جو میں نے محسوس کی ہے. اس کے لیے تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. پرسپیکٹو کہ ہمارے جو آباؤ اجداد تھے نا تقریباً 70,000 سال پہلے, تو وہ ہنٹر تھے. اور اس وقت ایک آدمی جاتا تھا, اس کو صرف مسل پاور کی ضرورت تھی جس سے وہ شکار مار کے لاتا تھا, اور اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کی کوئی سکل نہیں چاہیے تھی. اور یہ بہت عرصہ ہنٹر ایج چلتی رہی. پھر ایک بہت زبردست واقعہ ہوا اور ایک بہت زبردست چیز دریافت ہوئی جس کی وجہ سے انسانیت ٹوٹلی چینج ہو گئی. اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ زبردست چیز کیا ہو سکتی ہے. وہ صرف ایک سمپل سی بات تھی کہ آگ ڈومیسٹیکیٹ ہو گئی. اس سے پہلے پہاڑوں پہ لگی ہوئی آگ لوگوں کو نظر آتی تھی, مگر خود پتھروں کو رگڑ کے آگ جلانا اور اس کو گھر میں اپنے کنٹرول میں کرنا ہوا, اس کے ساتھ پوری انسانیت میں ایک چینج آ گئی. ایک چمپینزی 18 گھنٹے کھانے کو چباتا ہے, اتنی انرجی لگتی ہے. جب آگ سے کھانا نرم ہونے لگا تو ٹوٹل میسٹیکیشن ٹائم جو ہے وہ 2 گھنٹے پر آ گیا, اور انسان کو کچھ اور سوچنے کا موقع ملا, اور اس سے ایگریکلچر دور شروع ہوا جس سے فیملی لائف بنی, ڈسٹریبیوشن آف لیبر کا کانسیپٹ آیا, خاندان کا. اس سے پہلے خاندان کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, انسان اسی طرح رہتے تھے جس طرح سے باقی جاندار رہتے ہیں. لیکن جب وہ ڈومیسٹیکیشن ہوئی آگ کی, تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ایک ایگریکلچر دور آیا. میں ذرا تھوڑا مختصر کروں گا. اس دور میں جو کہ بہت صدیاں چلا, جس کے پاس زمین زیادہ تھی وہ زیادہ امیر تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھیں وہ ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں جس کے پاس لینڈ زیادہ ہے وہ لینڈ لارڈ ہے. لیکن اس کے بعد پھر کئی صدیوں کے بعد ایک دور آیا جس میں پہیا ایجاد ہوا, اور اس کے بعد یہ ایگریکلچر ایج جو ہے یہ انڈسٹریل ایج میں کنورٹ ہو گئی. اور یہ پتہ لگا کہ 10 مربع زمین سے آپ جتنا غلہ اگا سکتے ہیں ایک فیکٹری لگانے سے جو کہ ایک کنال میں ہے اس سے کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں. تو اب جس کے پاس فیکٹریاں زیادہ تھیں وہ بڑا آدمی تھا, وہ ریسورسفل تھا, وہ پاورفل تھا اور وہ ویلدی تھا. اس لیے ہنری فورڈ امیر آدمی تھا, راک فیلر امیر آدمی تھا, اس طرح کے لوگ امیر آدمی تھے جن کے پاس بہت زیادہ تھی. میں یہاں رکتا ہوں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم نہ ایگریکلچر دور میں ہیں نہ انڈسٹریل دور میں ہیں. پچھلے تقریباً 70-80 سال سے ہم ایک تیسرے دور میں شامل ہو گئے ہیں. میں اس کا نام آپ کو نہیں بتاتا, میں اس کے ساتھ ایک پیرلل اور چیز بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اور میری آپ سے دست بدستہ گزارش ہے کہ اس بات کو غور سے سنیے گا کیونکہ یہ ڈائریکٹلی ہمیں کنسرن کر رہی ہے. دوسرا میں ساتھ جو پیرلل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے لے کر آج تک کوئی سا بھی مذہب ہو, چاہے وہ جوڈزم ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو, چاہے اسلام ہو, سکھزم ہو, ہندوازم ہو, اولڈ گریک مذہب ہو یا مصر کا جو پرانا مذہب ہو, وہ سارے کے سارے ایک پیدا کرنے والے, چاہے نام اس کو جو مرضی دیں, مگر ایک ڈیوائن گائیڈنس کے محتاج اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اوپر سے ایک ہدایت ملے گی ڈیوائن طریقے سے. اللہ پاک نے ہمارے ساتھ احسان کیا کہ نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے,
उनके खातम नबीन होने की वजह से वो जो डिवाइन मैसेज था वो अपनी तकमील को पहुंचा, और हमारे जिम्मे ये हुआ कि अब आपने इसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। लेकिन एक और ये दौर जो मैंने पहले वाली आपको दो बातें बताई थी ना, प्लीज उनको जहन में रखकर सोचिएगा। उसके बाद एक तब्दीली आई, और यह तब्दीली ज्यादा पुरानी नहीं है, 600-700 साल पुरानी है। एक साहब थे वेस्ट में जिनका नाम था कांट, और कांट बहुत बड़े फिलोसोफर थे। उन्होंने एक फलसफा पेश किया जिसको प्रोजेक्ट ऑफ एनलाइटमेंट कहते हैं। उन्होंने जरा गौर से सुनिएगा, उन्होंने यह कहा कि जो पांच हवास से, फाइव सेंसेस से जो चीज हमें महसूस होती है, उससे जो नॉलेज और वर्ल्ड व्यू हमारा बनता है, बस वही मुस्तनद वर्ल्ड व्यू है। इसके अलावा हमें किसी डिवाइन की जरूरत नहीं है, किसी वही की जरूरत नहीं है। और उन्होंने यह कहा माजल्ला कि खुदा का तसव्वुर इखलाकी तौर पे तो ठीक है, लेकिन उसूली तौर पर किसी डिवाइन के कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उससे पहले इंसान यह कहता था कि मैं अपने पैदा करने वाले की मानता हूं, अब फिर इंसान किसको माने। तो एक नजरिया यह हुआ कि नहीं, डिवाइन से ज्यादा अहम चीज है ह्यूमनिज्म, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट आया, और उस कॉन्सेप्ट में हम अब यहां इस तरफ, पहले जो खुदा कहता था वो हमने मानना है, फिर यह था कि नहीं, जो ह्यूमन सोचता है वो मानना है। इस तरफ यह हुआ कि अब इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए एक तीसरी चीज आ गई, और वो आप जरा गौर कीजिएगा क्या चीज है, जमीन, इंडस्ट्री, और तीसरी चीज का नाम है डेटा। डेटा का मतलब यह है कि लोगों के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन जिसके पास होगी वो बहुत पावरफुल है। जो एक जमाने में रॉकफेलर दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, हेनरी फोर्ड दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, अब दुनिया का अमीर तरीन आदमी वो है जिसके पास मेरा और आपका डेटा मौजूद है। दुनिया का अमीर तरीन आदमी जो है वो बिल गेट्स है, और वो गूगल का मालिक है, और वो जो है फेसबुक का मालिक है, और ट्विटर का मालिक है। ट्विटर का मालिक एक सुई भी नहीं बनाता, फेसबुक का मालिक एक सुई भी नहीं बनाता, लेकिन वो कई मुल्कों के बजट से उसका बजट ज्यादा है, क्योंकि उसके पास डेटा ज्यादा है। इलॉन मस्क ने $44 बिलियन का ट्विटर खरीदा था, जो कि ऐसा भी नहीं कि जिसको पकड़ के मैं जेब में डाल सकूं, उसकी मटीरियल वैल्यू एक तिनके के बराबर नहीं है। तो हम सोचिए तो सही कि ये $44 बिलियन की क्या चीज उसने खरीदी थी। यह बात बहुत खतरनाक है कि पिछले 20-30-40 साल से मैं और आप प्रोडक्ट हैं, और हम सब के डाटे की एक फाइल बनी हुई है, और हमारे साथ एक क्रामन कातबीन लगा हुआ है जिसका नाम है मोबाइल फोन एंड स्क्रीन। और मुझे आप ये बताइए, आप एक खत लिखेंगे रॉयल मेल से तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप एक कार्ड लिखेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, आप रोजाना अपने बहनों से, भाइयों से, दुनिया के साथ व्हाट्सएप के ऊपर यानी वीडियोस कर रहे हैं, ऑडियोस भेज रहे हैं, उसके कोई पैसे नहीं है। और यह कहा जाता है कि व्हेन यू आर नॉट पेइंग फॉर अ प्रोडक्ट देन एक्चुअली यू आर द प्रोडक्ट। और ये हम सब की फाइलें जिस तरह करामन कातबीन बना रहे हैं वो डेटा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ये अंदाजा लगा लिया कि जिसके पास डेटा ज्यादा होगा वो पावरफुल होगा, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। लिहाजा, और इधर पहले खुदा की मानी जाती थी, फिर ह्यूमन राइट्स आ गए कि इंसान खुद करे, इसके मुकाबले में अब तीसरी चीज जो आ गई है उसका नाम है एल्गोरिदम्स। जैसे जमीन और फैक्ट्री और फिर डेटा, इधर खुदा, इंसान, और अब एल्गोरिदम्स। अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो ये दोनों जो बहनें बैठी हैं ना, ये साथ वाली को ये कहें कि आपका कोट बहुत खूबसूरत है, मैंने ये कोट खरीदा था, इस तरह का तो मुझे कहीं से मिला नहीं, और ये इस कोट की जबरदस्त है, और कहां से आपने लिया था। आप अभी घर जाएं तो आपके पास कोटों के इश्तिहार आने शुरू हो जाएंगे। आप अभी एक साथ से करें कि मैं को घर लेना चाहता हूं, घर नहीं अच्छे मिलते, पता नहीं क्या है, थोड़ी देर बाद आपको प्रॉपर्टी के इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे, प्रॉपर्टी डीलर्स के इश्तिहार आना शुरू हो जाएंगे। और इस बात इसका बहुत खतरा है कि अब हम, जैसे मैं बहुत अरसा इस्लामाबाद में रहा हूं, लेकिन अब मैं इस्लामाबाद में गूगल मैप के बगैर और वॉइस के बगैर गाड़ी नहीं चला सकता। यानी मैंने कहां जाना है ये मैं एल्गोरिदम से पूछूंगा, मैं कहां जा, मैं क्या खाऊंगा ये मैं एल्गोरिदम से पूछूंगा, मैं किस यूनिवर्सिटी में दाखिल हूं ये एल्गोरिदम से पूछूंगा, और अगर बुरा ना मनाए तो मैं किसके साथ शादी करूं ये मैं एल्गोरिदम से पूछूंगा। और एल्गोरिदम आपको, और मैं बताऊंगा कि मैं इस लड़की से शादी कर रहा हूं क्योंकि मैं उससे नौजवान की मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तो उस नौजवान को ये बताएंगे कि आपका डाटा भी हमारे पास मौजूद है, उस लड़की का डाटा भी हमारे पास मौजूद है। और इस डाटे का मतलब ये नहीं कि मैं यहां आया था, मैंने एक सेल्फी खींच ली तो मेरा डाटा हो गया ना, मैं गाड़ी पे चल रहा था तो मुझे पता लग गया, ये नहीं। जब मैंने एक फोन को देखा, मैंने देखा उसकी मिसाल बकायदा लोगों ने लिटरेचर में दी है कि एक बीच के ऊपर एक आदमी एक औरत के साथ एक कुत्ते को पकड़ के जा रहा था, तो आपकी आंख कुत्ते पे पड़ी कि औरत पे पड़ी कि मर्द पे पड़ी कि बीच पे पड़ी, और उस किस पर आपकी प्यूपल डायलेट हुई और कितनी दफा डायलेट हुई, यह भी हमारा डाटा हमारे पास मौजूद है। लिहाजा वो कंप्यूटर यह कहेगा, और यह मैं फिक्शनलाइज नहीं कर रहा कि आप इस लड़की से शादी कर लें, लेकिन मसला यह है आपके सारे डाटा की बेस पे हमारा यह ख्याल है कि 17 मार्च 2023 तक आपकी तलाक हो जाएगी, और आपका जो मोहब्बत का बुखार है वो तकरीबन 4 हफ्ते प्लस माइनस 3 विद अ पी वैल्यू ऑफ 0.5 से कम उसके ऊपर ये सारा हो जाएगा। तो इसलिए हम इस शिकंजे में फंस चुके हैं। हम अगर मैं ये कहूं ना कि वी आर हैकेबल, प्लीज रिमेंबर दैट इज नॉट ट्रू, वी आर नॉट हैकेबल, वी हैव बिन हैक्ड, और हम सबका डाटा बना हुआ है और हमारे अंदर डोपामीन के रिसेप्टर्स को इस कदर इन्फ्लेट कर दिया गया है स्क्रीन के साथ कि बैठे बैठे बेचैनी होनी शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या हुआ। मेरी बहन रहती है डबलन में, वो कहती है जब मोबाइल गुम जाए तो ऐसे लगता है जैसे छोटा काका गुम हो गया, और आदमी उतना परेशान नहीं होता काके पे जितना मोबाइल के गुम होने पर परेशान। इसलिए मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इफ वी वॉन्ट टू सेव आवर सेल्फ एंड सेव आवर कमिंग जनरेशन, तो इस टेक्नोलॉजी से हम जान तो नहीं छुड़ा सकते। इसके थ्रू हमारी बैंकिंग है, इसके थ्रू ट्रेवलिंग है, इसके थ्रू सारी वो चीजें हैं, लेकिन जितना हो सकता है मेहरबानी करके अपने आप को और अपने बच्चों को नेचर की तरफ लेकर आइए, बिकॉज हमारे बच्चों की तरबियत यह हो रही है कि वो रिलेशंस को कनेक्शंस को रिलेशन समझ रहे हैं। इफ दे हैव गॉट 5000 पीपल ऑन देयर मोबाइल फोन, दे से आई हैव गॉट 5000 फ्रेंड्स, बट दे आर नॉट द फ्रेंड्स, दे आर कनेक्शंस। Relations require investment in them. Relation requires emotional content in it. Relations require a thick bond. But now our children are becoming shallow. Their relations are very, very thin. Because if I have to break a relation with Gilani Saab, which is years back, I have to put a lot of effort in breaking this relation. But now our kids and ourselves also, if we want to break a relation, we have to only unfriend the, we have to put the unfriend button and the relation is gone. And we have to make a new relation, we have to just put a friendship button and that it's on. So if we want to save ourselves, our generations, aur is baat ka bahut imkan hai ki agar humne screen ke use ko limit na kiya aur apne aap ko victim of that data na banaya, aur iske mein na kiya humne, बहुत थोड़े अरसे में ऐसी जनरेशन पैदा होने वाली है जिनके अंदर चाइल्डहुड डिप्रेशन होगी, जिनके साथ रिलेशनशिप प्रॉब्लम होंगे, जिनकी एबरेंट किस्म की एबनॉक्सिक सेक्सुअल डेवलपमेंट होगी, जिनके अंदर सुइसाइडल टेंडेंसीज होंगी, वो उस माशरे के लिए डिवेस्टेटिंग होंगे। तो इसलिए बस असल में इस मौजू पर मैं चाहता हूं कि मैं पूरी दुनिया में वर्कशॉप करूं और तफसील से लोगों को बताऊं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि यानी काफी वक्त हो गया है, मैं सिर्फ आपको एक फूड ऑफ थॉट दे रहा हूं, और इस पर मैंने तफसील से अपने चैनल पे बातें की हुई हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं फर्दर को मुझे मौका मिले, दोस्त यहां आए तो मैं इसके ऊपर आपसे अर्ज कर सकूं कि ये इतना सीरियस प्रॉब्लम है कि हमें फौरी तौर पर अपने घर में एक डिसिप्लिन को डेवलप करना है और स्क्रीन के यूज को लिमिट करना है। अगर आप उसकी गाइडलाइन मुझे कहें तो मैं बताऊं कि हमारे पास स्क्रीन का यूज सिर्फ दो पर्पज से होना चाहिए, either for information, like I'm seeing a patient in my clinic and I prescribe a medicine and suddenly mujhe khayal aata hai ki yaar ye aurat pregnant na ho, to main usko dawaita hu this medicine in pregnancy, jawab aa jata hai very nice, aapke bachcha pad raha tha usne dekhne ki information ke liye chahiye, very nice, for information we should use, and number 2 for communication, aapne email karni hai, khat kisi se phone pe baat karni hai, apart from these two uses which are fantastic, there should be no third use. एंड देयर शुड बी नो यूज फॉर एंटरटेनमेंट. प्लीज आप अपने घर में एक डिसिप्लिन लगा. मैं अपनी बहनों से भी डिस्कस ख्वाहिश करूंगा कि मैं उनको ये बात बता सकूं कि आप घर में अपने ऊपर अपने बच्चों पर यह डिसिप्लिन लगा दें कि एंटरटेनमेंट के लिए पार्क में जाना है, जू में जाना है, जिम में जाना है, स्विमिंग पूल में जाना है, जो फूफी रहती है फलां जिसको बड़े सालों से नहीं मिले उसके पास जाना है, कहीं हमने मस्जिद में आना है, हमें नीडी लोगों के पास जाना है, हमें होमलेस लोगों के साथ बात करनी है, हमने सड़क साफ करनी है, हमें गार्डनिंग करनी है. एंटरटेनमेंट के लिए हमने स्क्रीन को यूज नहीं करना. इफ दिस वन टेक होम मैसेज वी टेक फ्रॉम हियर, आई थिंक दिस कैन क्रिएट अ रेवोल्यूशन इन आवर रिलेशनशिप विद ईच अदर, इन द ट्रेनिंग ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड ऑल्सो ट्रेनिंग ऑफ आवर सेल्फ एज वेल. जो मैं आखिरी बात कर रहा हूं, जो बच्चे हैं ना, इस डेटा की बम्बार्डमेंट की वजह से, मैं बहुत ही दुख से आपसे अर्ज करता हूं, हम सीरियस बैठे हैं, कि अगर आपकी बेटी 8 साल की है और आपने उसको फ्री मोबाइल दिया हुआ है और कोई रिस्ट्रिक्शन और वो नहीं है, वो ऐसी तमाम चीजों को विजुअली एक्सपीरियंस कर चुकी है जो कि हमारी जनरेशन में 40-40 साल के लोग भी एक दूसरे से बात करते हुए शर्माते थे. और मेरे पास बेशुमार केस हिस्ट्रीज हैं और ऐसी ऐसी बातें हैं कि मैं और आप सुन के हम लर्जा का तारी हो जाएगा. इसलिए मेहरबानी करके हम अपनी जनरेशन को बचाएं, अपने घर के अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप करें. खास तौर पर देखिए, इतना डाटा बम्बार्ड हो रहा है, अनफिल्टर्ड डाटा, और हमारा दिमाग उसको अजिमुलेट नहीं कर सकता, और इतना फजूल डाटा इकट्ठा हो रहा है. अगर हमने घर में, और बड़े लोग शुरू करें कि भी मैंने आज से फैसला कर लिया है कि एंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं करूंगा, तो इंशाल्लाह बच्चे उसको फॉलो करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग. आई नो दैट आई हैव नॉट मेड अ जस्टिस, आई कुड नॉट मेक अ जस्टिस विद दिस टॉपिक, बट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू दैट वी मस्ट गिव इट अ सीरियस थॉट. राइट, फाइन फाइन. सो थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह खैर. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी. आई एम अगेन वेरी ग्रेटफुल टू UKIM एंड अल खिदमत एंड दीज ब्रदर्स. आई एम एंजॉइंग देयर हॉस्पिटैलिटी फॉर द लास्ट 3 days. So it has been wonderful. Jazakallah khair.